الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورۃ النمل پڑھ رہے ہیں ہم اس کلاس میں، اور اس میں آیت نمبر 15 سے 19 تک کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل پچھلی کلاس میں کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ معارف المسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو معارف المسائل میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہر آیت کے الگ الگ معروف مسائل بیان نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے کچھ منتخبات جو ہیں نا ان کے خالی معارف اور مسائل بیان کرتے ہیں. معارف کا لفظ جو ہے وہ عرفان سے نکلا، اور عرفان کا اردو میں جو ایک ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پہچان یا آگاہی، کسی چیز کی گہری پہچان آگاہی، تو اس کو جو ہے وہ عربی میں معارف کہا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کہ اوپر سے جو ہے نا وہ، یعنی کچھ چیز تو کیا بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی ایک ظاہر ہوتی ہے اور اس کی ایک باطن ہوتی ہے. ظاہری شکل جو ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل نہیں ہوتی. آپ اوپر سے اپیرنٹلی آبویسلی جو چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں تفصیل نہیں ہوتی، اس میں اجمال ہوتا ہے. اس سے کچھ کچھ انڈیکیشنز تو ہو جاتی ہیں کہ اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اندر جو ہے نا وہ گہرائی ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے. تو اندر کی باتیں سمجھنا، پہچاننا، آگاہی حاصل کرنا، اس کو جو ہے نا وہ عرفان کہا جاتا ہے، اور اسی کے جو نکات ہوتے ہیں ان کو معارف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسائل کا جو لفظ ہے یہ مسئلہ سے نکلا. مسئلہ کا جو لفظ ہے وہ سوال سے نکلا. سوال یعنی کوشچن، سم تھنگ دیٹ نیڈز کوشچننگ، جو چیز بغیر پوچھے سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال کرنا پڑے، تو اس کو شریعت کی زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی، ان جنرل بھی مسئلہ کہتے ہیں. یعنی کوئی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس قسم کی چیز ہو جس کے بارے میں سوال کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے. تو معارف اور مسائل. ٹھیک ہے. امید ہے کہ سب کے ذہن میں بات کلیئر ہوگی. تو اب معارف و مسائل ان آیات کے حضرت لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ٹھیک ہے. کہ تحقیق کہ ہم نے دیا داؤد کو اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم. علمن اس کا ترجمہ ایک علم سے کیا جائے گا کیونکہ یہ نکرہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں. علوم الانبیاء جو نبوت اور رسالت، تو ان علوم کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم شرعیت. شریعت، شین را کے بعد یا آتا ہے اور پھر عین تا، شریعت. ٹھیک ہے. یعنی اوامر اور نواہی. شریعت کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اوامر اور نواہی، انہی کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے، اور یہی جو ہیں وہ علوم نبوت کہلاتے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ اس کے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں تو علوم نبوت یعنی علوم شریعت ہی ہے مراد، لیکن اس کو جب آپ جنرلائز کرتے ہیں نا تو اب اس کے ود ان جو ہے وہ دوسرے علوم بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ کسی اور چیز کا علم جو کہ واقعی علم کہلانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ فنون جو ہے وہ کرافٹس مین شپ کو کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے کرافٹس مین شپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کرافٹنگ یعنی کسی چیز کو مینوفیکچر کرنا، کسی چیز کو جو ہے نا جوڑ کر کے کچھ کا کچھ بنا دینا.
या किसी चीज की जो है वो शक्ल थोड़ी सी तब्दील कर देना, इसको फन कहते हैं। ठीक है, तो इल्म का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है खुसूसी तौर पर जो है ना, ये इस्तेमाल होता है उलूम आखिरत के लिए, यानी जो हायर उलूम है जिनसे कि इंसान की आखिरत बनती है, और जो बाकी दुनियावी उलूम है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग है और प्लानिंग है और ये सारी चीजें जो कि दुनिया के मामलात चलाने के लिए जरूरी होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होते हैं, है ना, ये सारी चीज जो है ना, ये असल में फनून कहलाते हैं। ये उलूम नहीं है असल में ये उलूम नहीं है, अगरचे इल्म का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन असल में ये फनून है। ठीक है, फन है, क्राफ्ट्समैनशिप है, ठीक है, हुनर, हुनर का भी लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो उलूम शरईयत के विदिन जो है ना, दूसरे उलूम और फनून भी अगर यहाँ पे अल्लाह ताला की मुराद है तो कोई ऐसी बईद बात नहीं है, फारफेच बात नहीं है, बल्कि ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, जैसे मिसाल इसमें एक दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को जरह साजी की सनअत सिखा दी गई थी, जरह साजी जिसको जरा बख्तर भी कहते हैं, आर्मर है ना, जो जंगों के अंदर जो है वो पुराने जमाने में चूंकि तलवार और नेजे और तीरों के साथ जंगें होती थी, तो ये जरा जो है ना वो बाकायदा ऊपर पहनते थे। आज भी अक्सर आपने देखा होगा पुलिसमैन हो या इवन आर्मी के जो लोग जो हैं ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, ये सब का सब जो है ना ये जरा कहलाता है। अब इस जरा को जो है वो थोड़ा सा आप और वाइड कर लें तो बाकायदा जरा बख्तर, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां जो है ना वो भी फिर इसी के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को जरा बनाने का फन अल्लाह ताला ने सिखाया था। अब ये जरा बनाने का फन जो है ये खाने पीने के लिए भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, खाने के लिए आपको जरा पहनने की, जरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये किस किस जरूरत में इस्तेमाल होता है, जरा की जरूरत कब पड़ती है, आर्मर की जरूरत कब पड़ती है, जब लड़ाई हो रही हो। ठीक है, तो अब लड़ाई का जो है वो नबुवत से क्या ताल्लुक, नबुवत से इसका ये ताल्लुक है कि नबियों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर दावत का काम दे करके भेजा है, दावत और तबलीग। ठीक है, और दावत और तबलीग जो है इसकी एक्सट्रीम फॉर्म क्या है, अल्टीमेट फॉर्म क्या है, जिहाद। ठीक है, जिसको कि हम उर्दू मुहावरे में कह सकते हैं कि जब घी जो है ना वो सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर उसको बिल आखिर टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो दावत और तबलीग अगर सीधी उंगलियों से कारगर नहीं हो रही है तो फिर अल्टीमेटली जा करके फिर बाकायदा जिहाद और किताल की जरूरत पेश आती है, और वहां पर जो है ना फिर जरा बख्तर अप्लाई होती है। तो नबुवत का काम दावत और तबलीग था, और दावत और तबलीग की ही एक फॉर्म जो है वो जिहाद और किताल भी है, तो जरा का इससे ऐसे ताल्लुक बन गया। ठीक है, तो अब उलूम शरीयत के अंदर ये जरा साजी की सनद भी जो है ना वो दाखिल हो गई। ठीक है, तो फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैह, अच्छा इसी में आगे अगली अगली बात, यानी जरा साजी तो जिहाद से मुतालिक है ना, अब अगली बात कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, अलैहिमा डुअल का सीगा इस्तेमाल किया सलामती भेजने के लिए, अलैहिमा वरना अलैहिम अले वना अलैहि सलाम कहते हैं, ड्यूअल का सीगा क्यों, क्योंकि दाऊद और सुलेमान दोनों के दोनों जो है वो नबी थे, और नबियों के लिए अलैहि सलाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अलैहिमस सलाम जैसे सहाबा के लिए रजी अल्लाह ताला अन इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, उमर इब्न खत्ताब। ठीक है, अच्छा खत्ताब भी जो है वो नहीं, खत्ताब तो मुसलमान ही होते हैं, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन कहते हैं, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर, उमर रजी अल्लाह के जो बेटे थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी सहाबी और उमर भी सहाबी रजी अल्लाह ताला अनहुमा। ठीक है, तो इनके लिए अनहुमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों सहाबी थे, तो उसी तरह दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दोनों के दोनों नबी थे, बेटे और बाप। तो ये जुमराए अंबिया में एक खास इम्तियाज ये रखते हैं कि उनको नबुवत और रिसालत के साथ सल्तनत भी दी गई थी, यानी इनको नबी भी बनाया गया था और इनको मुलूक भी बनाया गया था, मलिक, दोनों मलिक थे, दोनों मुलूक थे। ठीक है, तो सल्तनत भी दी गई थी, और सल्तनत भी ऐसी बेनजीर के सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात और जानवरों पर भी उनके हुक्मरानी थी। ये सब अजीम शान नेमतों से पहले اللہ حق تعالیٰ کی نعمت علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمت علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالا تر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ علم کی نعمت جو ہے نا یہ اصل نعمت ہے اور باقی نعمتیں جو ہے وہ اس کے بعد آتی ہیں. تو اچھا کیا لکھا آپ نے, شوڈ ون یوز علیہ السلام فار امام مہدی. امام مہدی کے لیے علیہ السلام کا لفظ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو, بلکہ علماء کی کتابوں میں بھی مہدی علیہ السلام کا لفظ. باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ تو نہیں دیکھا کہیں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مجھے اگزیکٹلی اس کا جواب پتا نہیں ہے, سچی بات پتا نہیں ہے, آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے. اچھا تو ویسے اگر لفظی معنی میں لیا جائے کہ ان کے اوپر سلامتی ہو تو لفظی معنی میں تو پھر ٹھیک ہے نا, کیونکہ مہدی ہیں جبھی تو ان کے اوپر, یعنی مہدی ہیں جبھی تو آپ ان کا نام لے رہے ہیں نا, کہ بھی ہدایت پر ہیں, تو جو ہدایت کے اوپر ہے تو اس کے اوپر سلامتی کی دعا کر دینا جو ہے وہ تو یعنی کوئی منع کوئی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, باقی اصطلاحی جو استعمال ہے علیہ السلام کے لفظ کا, تو اس حساب سے جو ہے وہ صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور مہدی یہ نبی تو نہیں ہوں گے, یہ بات تو پتا ہے سب کو, تو نبی نہیں ہوں گے. اچھا ختم نبوت والا بھی اس کے اندر معاملہ آ گیا, آخری نبی تو گزر چکے ہیں دنیا سے. اچھا تو اب یہ بات پہلے ہو چکی ہے خلاصہ تفسیر میں غالباً یا ترجمے میں, کہ سلطنت کا جو علم ہوتا ہے نا, سلطنت چلانا, اس علم کو جو ہے وہ سیاست کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیاست بھی جو ہے وہ بڑا اسپیشل قسم کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملتا ہے, ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہوتا, یہ کتابوں سے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تھوڑا بہت انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کتابوں سے, لیکن یہ بڑا یعنی ایکسپیرینشیل قسم کا علم ہے, ایکسپیرینس سے اور صحبت سے اس کی سمجھ آتی ہے کہ معاملات کو کیسے چلانا ہے. تو ان کو جو ہے وہ خصوصاً یہ والا علم بھی دیا گیا تھا, اور اس کا تعلق بھی ظاہر ہے ان کی نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے عہدہ برآ ہونے کا تعلق تھا, اس کا سیاست کا بھی, کیونکہ ان کو پورے نظام کو بھی چلانا تھا, جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ کا, اور جو ایکسٹینڈڈ پھر اس کے بعد دوسرے علاقے بھی شامل ہوئے, تو ان سب کا نظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا تھا, تو نبوت کا حصہ ہو گیا یہ سب. انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی. اب اگلا عنوان حضرت نے باندھا وراثت کے متعلق, کیونکہ وورثہ سلیمان داؤدا. ٹھیک ہے, تو یعنی سلیمان نے وراثت لی یا وارث بنے وہ داؤد علیہ السلام کے, تو ورثہ سے لفظ ورثہ سے وراثت علم اور نبوت مراد ہے, وراثت مال نہیں. اتنا بڑا اہم یہ ٹاپک ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا بہت لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں اس والے کانسیپٹ کو, وراثت والے کانسیپٹ کو, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ورثہ سے یہاں پر وراثت علم اور نبوت مراد ہے, وراثت مال نہیں. ٹھیک ہے, اب مال سے متعلق جتنے بھی فزیکل چیزیں ہو گئیں نا دنیا کی, مال کا مطلب یہاں پر صرف سونا چاندی اور کرنسی نہیں, بلکہ دنیاوی مال و متاع. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ وراثت جو ہے نا وہ دنیاوی مال و متاع نہیں مراد ہے, بلکہ نبوت اور علم مراد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء, کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں. ٹھیک ہے, لا نرث ولا نورث, ہم نہ یعنی وارث بنتے ہیں اور نہ ہمیں وارث بنایا جاتا ہے کسی کا. ٹھیک ہے, یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث, یعنی کسی دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوتے, نہ ہم جو ہے وہ کسی سے یعنی کسی کے وارث بنتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, اور بے شک انبیاء جو ہے نا یہ نہیں وراثت میں چھوڑتے, یورثو نہیں وراثت میں چھوڑتے نہ دینار اور نہ درہم, یعنی دینار اور درہم جو کہ اس زمانے کی کرنسیز تھیں, دینار جو ہے وہ سونے کے کوائنس کو اور درہم جو ہے وہ چاندی کے کوائنس کو, یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ اصل کرنسی ہمیشہ سے دنیا میں رائج تھی, جب تک آ کر کے جب تک کہ बैंकिंग सिस्टम ने आकर के इसको जो है वो पेपर करेंसी से रिप्लेस नहीं कर दिया। तो उससे पहले जो है सोना चांदी होता था, तो दिनारन व दिरहमन, हम इसको यानी मौरूस अपनी विरासत के तौर पर नहीं छोड़ते, वलाकिन वरिसुल इल्मा, ठीक है, वरसुल इल्मा, फमन अखजहू, बल्कि हम इल्म को छोड़ते हैं विरासत में, ठीक है, बस जिसने उसको ले लिया, यानी हमसे जिसने उस इल्म को ले लिया, अखदा बेहद वाफिर, उसने एक बहुत वाफिर हिस्सा ले लिया, हज़्ज़न वाफिरन, एक वाफिर हिस्सा ले लिया, यानी एक बड़ा हिस्सा उसने अंबिया से जो है ना वो हासिल कर लिया, जिसने इल्म हासिल कर लिया, अंबिया वाला इल्म हासिल कर लिया, ठीक है, यानी उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन अंबिया में विरासत इल्म नबुवत की होती है, माल की नहीं होती। हजरत अबू अब्दुल्ला यानी जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत इस मसले को और ज्यादा वाजे कर देती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए, और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए, ठीक है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे तो ये थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर नबी अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए, ये हदीस के अल्फाज हैं, ठीक है, लेकिन क्या मतलब वारिस हुए, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान तो यानी आगे लिखा हुआ है 1400 साल का, 1700 साल या 1400 साल का फासला है, तो उनकी जो यानी दुनियावी मालो मता थी वो नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। अखली तौर पर भी यहाँ विरासत विरासत माल मुराद नहीं हो सकती, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आपकी औलाद में 19 बेटों का जिक्र आता है। अगर विरासत माल मुराद हो तो ये बेटे सब के सब वारिस ठहरेंगे, फिर विरासत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्सीस की कोई वजह बाकी नहीं रहती, क्योंकि माल की विरासत तो सब बेटों को मिलती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खाली कैसे मिली, वो वरिसा सुलेमान दाऊदा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो ये मालो मता की विरासत है ही नहीं, ठीक है, इवन दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान ये वाली विरासत मुराद नहीं है। इससे साबित हुआ कि विरासत वो मुराद है, यानी यहाँ पर विरासत वो वाली मुराद है जिसमें भाई शरीक नहीं थे, बल्कि सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने, और वो सिर्फ इल्म और नबुवत की विरासत ही हो सकती है, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के किसी दूसरे बेटे के नबी होने का कोई तذکرہ नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। इसके साथ अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुल्क व सल्तनत भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया, और इसमें मजीद इजाफा इसका कर दिया कि आपकी हुकूमत जन्नात और वहूश व तुयूर तक आम करती है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे, ठीक है, लेकिन उनकी बादशाह जो थी ना वो एक आम बादशाह थी इंसानों तक, ठीक है, अलबत्ता इतना जरूर था कि जब वो जबूर पढ़ते थे तो परिंदे जो है वो ठहर जाया करते थे, हवा फिजा में ठहर जाया करते थे उनकी आवाज को सुन करके, और उनके जबूर पढ़ने के वक्त जो है वो पहाड़ों के अंदर से भी एक एक किस्म की आवाज होती थी जो कि उनके साथ राइम कर रही होती थी, लेकिन ये बादशाहत नहीं थी, बस ये जबूर पढ़ने के वक्त इस किस्म का एक मुआवजा होता था, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर ये बादशाहत अता फरमाई गई जिन्नात के ऊपर और वहूश यानी वहशी जानवरों के ऊपर, जो जंगल में रहते हैं ना तो उनको वहशी जानवर कहा जाता है, जरूरी नहीं है दरिंदे मुरादों, बल्कि हर किस्म के जानवर जो कि जंगल में रहने वाले हैं उनके लिए वहूश वहूश का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तुयूर जो है वो आपको पता है परिंदे, हवा को आपके लिए मुसखर कर दिया गया, ठीक है, यानी प्योर विंड जिसको कहते हैं। इन दलाइल के बाद तबरिसी की वो रिवायत गलत हो जाएगी जिसमें उन्होंने बाज आइम्मा अहले बैत के हवाले से माल की विरासत मुराद ली है, ठीक है, जैसे कि वो एक मशहूर है ना ये कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है नबी अलैहिस्सलाम सलाम की वफात के बाद गई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि जी मुझे जो है ना वो आप नबी अलैहिस्सलाम सलाम की जो जो बाग थे जिसके अंदर से वो अपनी बीवियों को जो है वो दिया करते थे, ठीक है, जो आप सरसरम को जो सारा का सारा एक लंबा चौड़ा मसला है वो क्या कहते हैं उसको, क्या लफ्ज होता है, आप सरसरम को माल गनीमत में जो जो जो, जो खैबर के बागात मिले थे वगैरह, तो उन्होंने जाकर के मुतालबा किया कि जी अब तो मैं ही वाहिद औलाद हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पर मुझे उसके अंदर से मिलना चाहिए ताकि मेरे बच्चे वगैरह उसमें उसमें से फिर हासिल करें। तो फिदक, हाँ बाग फिदक, फिदक तो अबू बकर सिद्दीक ने मना कर दिया कि नहीं, ये यानी अंबिया जो है ना ये माली विरासत छोड़ते ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो सारी लंबी सी उसकी तफसील है कि उसके अंदर फिर किस तरह से। तो अहले बैत, बाज आइम्मा अहले बैत के हवाले से माल की विरासत जो लोगों ने मुराद दी है ना, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात और खातम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दरमियान 1,700 साल का फासला है, और यहूद ये फासला 1,400 साल का बताते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल से कुछ ऊपर हुई है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो वारिस बने सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो वो भी कौन सी वाली विरासत है, यानी नबी अलैहिस्सलाम को भी उलूम शरईयत, उलूम नबुवत मिले, और उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम को भी इसी तरीके से ऐसी बादशाहत मिली कि जो कि हर एक के ऊपर चलती थी। ठीक है ना, और वो यानी एक दुनियावी तौर पर भी एक बादशाहत थी, और उसके अलावा चरण परिंद के साथ भी, लेकिन वो भी उस शक्ल की बादशाहत नहीं थी जिस शक्ल की सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाहत मिली थी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली बादशाहत जो थी ना, ना उनसे पहले किसी को नहीं मिली, किसी को मिली ना उनके बाद किसी को मिली। अपने लिए जमा का सीगा बोलना जायज है बशर्ते के तकबुर ना हो, तकबुरन ना हो। अच्छा, ये पीछे जो टाइटल हमने पढ़ा अभी, अंबिया में माल की विरासत नहीं होती, तो इसके बारे में किसी को कोई सवाल हो, समझ में आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट विरासत जो है, वो जो सारा का सारा एक मसला उठाते हैं ना कि जी अली रज़ा तआला जो है चूंकि अहले बैत में से थे, तो उनको जो है वो मदीने की रियासत का जो है ना वो हकदार तो वो थे, और फातिमा रज़ा तआला जो है वो बागों की हकदार थी। ठीक है, तो इसके ऊपर यही जवाब दिया जाता है। ठीक है, कि अंबिया जो है ना ये माली विरासत और दुनियावी विरासत और ये सारी चीजें अपने अपनी औलादों में छोड़ने का सिलसिला कभी भी नहीं था, और ना नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ। अपने लिए जमा का सीगा बोलना जायज है, तो फरमाते हैं कि उल्लिमना मंतिक तैरी व उतीना अलख, अलख मतलब इलल आखिर, आखिर तक, यानी ये पूरी पूरी आयत जो है ना, तो इसका तर्जुमा क्या था कि हमें इल्म दिया गया परिंदों की बोली का, व उतीना मिन कुल्ली शयइन, और हर चीज में से हमें हिस्सा दिया गया। ठीक है, इन्ना हादा लहुल फजलुल मुबीन, ये अल्लाह ताला की का एक खुला फजल था। तो फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बावजूद खुद अकेले होने के अपने लिए जमा का सीगा शाहाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि रियाया पर रोब पड़े। ठीक है, और रियाया अताअत खुदावंदी और अताअत सुलेमान अलैहिस्सलाम में सुस्ती ना करें, क्योंकि बादशाह या पॉलिटिकल लीडर जो होता है ना, तो उसका रोब बड़ा अहम होता है। ठीक है, यानी एक तो चीज होती है ना कैरेट, कैरेट यानी गाजर। ठीक है, गाजर का मतलब अंग्रेजी का मुहावरा है यूजिंग द कैरेट एंड द स्टिक, कोई काम करवाने के लिए ना आपको कैरेट भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यानी जैसे आपको खरगोश को भगाना है तो खरगोश के सामने आप कैरेट रखेंगे ताकि वो कैरेट की जुस्तजू में भागे, कैरेट के शौक में भागे, गाजर खाने के शौक में भागे। ठीक है, लेकिन अगर वो गाजर के शौक में भागने के लिए तैयार नहीं है तो पीछे से एक स्टिक भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्टिक भी होनी जरूरी है, हर बंदा कैरेट देख करके नहीं भागता, हर बंदे के अंदर वो शौक के और मोहब्बत के जज्बात नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं जरा उनकी चमड़ी जो होती है थोड़ी दूसरी किस्म की होती है, मोटी खाल होती है या मोटा दिमाग होता है, मोटी अकल होती है वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोगों को फिर स्टिक की यानी खौफ की जरूरत पड़ती है, रोब की जरूरत पड़ती है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, तो उसके लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। तो इन्होंने जो इस किस्म का शाहाना खिताब फरमाया तो ये इसी के लिए था, रोब के लिए था। ठीक है, बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो बाकायदा अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, क्या थी, कि अल्लाहुम्मा अज्अलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुन नासे कबीरा, कि ऐ अल्लाह आप मुझे मेरी आंखों में छोटा बना दीजिए, यानी मेरे मेरे अंदर कोई तकब्बुर ना हो, मुझे अपनी आंखों में तो छोटा बना दीजिए लेकिन वफी आयुन नासे, इंसानों की निगाहों में मुझे बड़ा बना दीजिए। क्योंकि जब उनको खिलाफत मिल गई थी और उनको जो है वो पूरा निजाम चलाना था और कितने बड़े इलाके का उनको निजाम चलाना था, तो ऐसा निजाम जो है ना फिर लोगों की निगाहों में बड़े हुए बगैर चल नहीं सकता। ठीक है ना, उम्मीद तौर पर माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे हम बादशाहों के वाकयात पढ़ते हैं कि जिनके अब्बा जो थे ना वो बादशाह थे, तो बेटे को बादशाह तो मिल गई, लेकिन बेटे की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी या बेटे के जो है ना वो अहवाल ऐसे नहीं थे कि अवामुन नास के ऊपर उसका रोब बनता। तो ऐसे लोगों को जो है ना फिर क्या होता था कि या तो कोई बगावत हो जाती थी और बगावत हो करके वो बंदा ही खत्म हो जाता था, मतलब मार वार करके कोई नया बंदा अपनी हुकूमत बना लेता था, या ये कि उनके दरबार में कोई और ऐसा शख्स जो था ना जो कि जरा श्रूड किस्म का था, श्रूड किस्म का होता था, बड़ा जरा इस किस्म का जहीन फतीन होता था ना, तो वो फिर प्रैक्टिकली वो बादशाह बन जाता था, अगरचे के तख्त के ऊपर जो है वही शहजादे साहब बैठे हुए, वही साहिबजादे साहब तख्त के ऊपर तो बैठे हुए, लेकिन असल में सिक्का जो है ना वो इस दूसरे बंदे का चल रहा है, क्योंकि इसका ये ही नोज हाउ टू मैन्युपुलेट पीपल। ठीक है, और इसका रोब है, दबदबा है, और शहजादे के ऊपर भी इसका दबदबा है, तो शहजादे साहब से खाली ठप्पा लगवाया जा रहा है बेसिकली, है ना, वो अंगूठा छाप किस्म के जिसको कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा हुआ, लेकिन वहां पर बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी। वहां पर तो अजीज मिस्र जो था उसका रोब चलता था, वो तो रोब वाला बंदा था, ये नहीं था कि उसका रोब कोई कम था। उसने तो बाकायदा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर के अपनी जिंदगी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अथॉरिटी दे दी थी। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसी तरह फरमाते हैं कि उमरा, हुक्काम और अफसरान को अपनी रियाया की मौजूदगी में अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करने में मुजायका नहीं है, जबकि वो सियासतन और इजहार नेमत की गर्ज से हो, तकब्बुर वो वताली के लिए ना हो। यानी सियासी हिकमत अमली के तहत वो ये काम कर रहे हो और अल्लाह ताला की नेमत का इजहार करने के लिए। ठीक है, तो उसमें फिर यानी सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर जो है ना वो आप फैसला नहीं कर सकते किसी के बारे में, बल्कि आपको वो अल्फाज किस मुंह से अदा हो रहे हैं उस मुंह को भी देखना जरूरी है। ठीक है, कि भाई ये अगर किसी नेक इंसान, किसी नबी या किसी वली या किसी सहाबी या किसी यानी अहले इल्म मशायख में से कोई शख्स अगर फलाना लफ्ज कह रहा है जो कि बजाहिर गलत लग रहा है, तो हमें उसकी तावील करनी होगी, यानी हमें उसकी कोई पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन निकालनी होगी, क्योंकि बोलने वाला शख्स जो है ना वो उससे ऐसी तवक्को नहीं है कि वो गलत और बुरी बात कहेगा। ठीक है, तो सिर्फ अल्फाज को देख करके जो है ना फिर हम भाग नहीं सकते, अल्फाज पकड़ के भाग गए ना, जैसे कि हम लोगों को आदत बनी हुई है काम करने की। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स जिसका कि ओवरऑल आगे पीछे ऊपर नीचे सारे मामला बिगड़ा हुआ है, अब वो ऐसे अल्फाज कह रहा है, तो फिर इतना ज्यादा तावील तशरीह और ये सब करने की जरूरत नहीं होती उस वक्त। ठीक है, परिंदों और चौपायों में भी अक्लो शऊर है। दूसरा मसला यहाँ पे बयान करते हैं कि इस वाक्य से साबित हुआ कि परिंदे, चरिंदे और तमाम हैवानात में भी अक्लो शऊर किसी दर्जे में मौजूद है, अलबत्ता उनकी उकूल इस दर्जे की नहीं कि उनको अहकाम शरा का मुकल्लफ बनाया जाता, और इंसान और जिन्नात को अक्लो शऊर का वो कामिल दर्जा अता हुआ है कि जिसकी बिना पर वो अल्लाह ताला के मुखातब हो सके और उन पर अमल कर सके। ठीक है, यानी इससे पहले कई दफा बात हो चुकी है कि ज़विल कुल, अकल वाले, ये लफ्ज जो है ना सिर्फ इंसानों और जिन्नों के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और अकल जो है वो तो पत्थरों में भी मौजूद है, जमादात में भी मौजूद है, हैवानात में भी मौजूद है, नबातात में भी मौजूद है। ठीक है ना, ये जो दरख्त का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में दहाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया था, तो ऐसे ही बगैर अकल के, बगैर समझ के, इतनी उसके अंदर अकल समझ थी, हमसे तो ज्यादा ही थी बल्कि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त कर सका, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं। ठीक है, तो नबातात के अंदर अकल के कितने वाकयात मौजूद हैं, आप सल्लम को सजदा कर रहे हैं कि आप सल्लम को गुजरते हुए देख रहे हैं, तो बाकायदा यानी झुक रहे हैं आप ससरंग के सामने, आप ससरंग के सामने जो है वो यानी ऊपर जो है वो साया कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से पूरे दरियाए नील राइट, यानी ये जो पानी के कतरे मिलकर के जो दरियाए नील बनता है ना, बाकायदा इसका एक वजूद है और उस वजूद के अंदर एक अकल है। यानी अजीब और गरीब किस्म का फिनोमेना है ये, हैरानी होती है कि ये जो अकल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो अकल का लफ्ज ही इस बात की गवाही देता है कि अकल जो है ना ये एक रूहानी कैफियत है, रूहानी सलाहियत है। तो रूह होगी तो अकल होगी, ठीक है। तो दरियाए नील के अंदर पूरी एक रूह है जो कि दरियाए नील को आइडेंटिफाई करती है कि ये दरियाए नील है। उसी तरीके से ओहद पहाड़ क्या है ये यानी एक है तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर, लेकिन इस पत्थर के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो पड़े होते हैं वहां पर, वो भी ओहद पहाड़ का हिस्सा ही कहलाते हैं। ये सब मिल करके एक ओहद पहाड़ बनते हैं और इस ओहद पहाड़ की बाकायदा एक रूह है। क्यों रूह, कैसे कह रहे हैं कि हम रूह, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसको मुखातब होते हैं, खिताब फरमाते हैं, ए ओहद तू क्यों हिलता है, क्या तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और तीन शुहदा नहीं खड़े हुए। और ओहद हिलना बंद कर देता है। आपसे फरमाया कि ओहद जो है इसको हमसे मोहब्बत है और हमें इससे मोहब्बत है, यानी एक बाकायदा वजूद है ओहद पहाड़ का, उसकी एक अकल है, समझ है, उससे बात की जाती है, वो बात सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है। उसी तरह दरियाए नील को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है वो खत लिख करके भेजते हैं, और उस खत को जो है वो अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला जो है वो नील के अंदर गिरा देते हैं। हालांकि पानी भी नहीं था वहां पर उस वक्त, तो क्योंकि नील तो चलना बंद हो गया था, तो उसकी पोजीशन के ऊपर जब उस खत को गिरा दिया जाता है नील को खिताब करके, ए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो मत चल, हमें तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू चलना शुरू हो जा, अल्लाह के हुक्म से अगर तू चलता है। और दरिया नील चलना शुरू हो जाता है और आज तक वो नहीं रुकता। तो अकल राइट, ये अकल तो ऐसी चीजों के अंदर मौजूद है, तो हमें तो अल्लाह ताला ने अकल का सबसे एडवांस दर्जा, बल्कि इंसानों को सबसे एडवांस दर्जा है, जिन्नों का दर्जा उनसे थोड़ा सा कम, यानी सेकंड जो लेवल आता है ना अकल में वो जिन्नों का लेवल आता है। सबसे अशरफुल मखलूकात सिर्फ इंसान है, जिन नहीं है अशरफुल मखलूकात। तो किस बुनियाद पर अशरफुल मखलूकात है, ना तो हमारे पास इतना इतनी इतनी ताकत है, जिन्नों से भी कम ताकत है, हाथियों से भी कम ताकत है, शेर चीते बीच से भी कम ताकत है, तो एक बकरा भी हमें अगर टांग मार देना तो हम तो उधर ही लेट जाएंगे, तो हमारे पास तो कोई ताकत ही कोई नहीं। और क्या क्या चीजें, ना तो हमारे पास कोई रफ्तार है, ना हमारे पास कोई ऊंचाई है, ना हमारे पास कोई चौड़ाई है, सब कुछ तो जानवरों और जिन्नों के पास है राइट। हमारे पास है क्या सिवाय इस अकल के, ठीक है। इस अकल को इस्तेमाल अगर सही कर लेंगे तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमें मुकाम मिल जाएगा, और इसी अकल की नाशुक्री करेंगे यानी इस अकल को जो है वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बुरा अजाब भी इंसान को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ही अकल है, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बुरी पिटाई भी उसी की होगी जो कि बड़ी नेमत की नाकदरी करता है, ठीक है। तो अक्लो शऊर का वो कामिल दर्जा आता हुआ कि जिसकी बिना पर वो अल्लाह ताला के मुखातब हो सके और उन पर अमल कर सके, इसी वजह से अहकाम शरीयत का मुकल्लफ ये सिर्फ इंसानों और जिन्हों को बनाया गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कबूतर सब परिंदों में ज्यादा अकलमंद है। इब्ने अतिया ने फरमाया कि चूंटी जहीन अकलमंद जानवर है, उसकी कुव्वत शाम्मा बड़ी तेज है, जो जो कोई दाना उसके कब्जे में आता है उसके वो दो टुकड़े कर देती है ताकि आगे ताकि उगे नहीं, ठीक है, यानी अपनी खुराक के लिए उसको रखना है ना, तो अब वो दाना अगर उग गया तो फिर उसकी खुराक नहीं बचेगी, तो वो उसको दो टुकड़े कर देती है। तो सबसे पहले वो उसके दो टुकड़े करती है ताकि उगे नहीं, और सर्दी के जमाने के लिए अपनी गिजा का जखीरा जमा करती है। आजकल तो बड़ी किताबें और वो जो साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान के ऊपर जो है ना, तो उसके अंदर एंट और हनी भी, ठीक है, क्योंकि इसका भी जिक्र है, नहल का भी, तो हनी बी की कितनी अकलमंदी, कैसे कैसे वो अपनी छत्ता बनाती है और क्या क्या उसका पूरा का पूरा सिस्टम है, इनका खूब जिक्र होता है इन किताबों के अंदर। अच्छा, आपने कोई सवाल लिखा था अंबिया अलैहि सलाम विरासत में माल नहीं छोड़ते, क्या ये हम अहले सुन्ना वल जमात के अकायद में से है? जी, ये अहले सुन्ना वल जमात के अकायद में से ही बना है, अंबिया अलैहि सलाम जो है वो माल नहीं छोड़ते। फायदा, आयत में मनतक तैर यानी परिंदों की बोली की तख्सीस हुदहुद के वाक्य की वजह से है जो परिंदा है, वरना हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को परिंदे, चरिंदे और तमाम हशरातुल अर्ज की बोलियां सिखाई गई थी। ठीक है, यानी चूंटी जो है ये हशरातुल अर्ज में आती है ना, क्योंकि ये पेट के बल चलती है, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो चूंटी का तो जिक्र भी मौजूद है, जैसा कि अगली आयत में चूंटी की बोली बेच समझने का जिक्र मौजूद है। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में इस मकाम पर मुख्तलिफ परिंदों की बोलियां और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उस पर यह फरमाना कि यह परिंदा ये बात कह रहा है तफसीर से नकल किया है, और तकरीबन हर परिंदे की बोली कोई नसीहत का जुमला है। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में जो है ना वो परिंदों की बोलियां नकल करी हैं, और बोलियां क्या है, फजूल की बातें हमारी तरह की नहीं बल्कि नसीहत के जुमले, कोई ऐसा करो ऐसा करने से फायदा होगा, ऐसा ना करो नुकसान होगा, ये सब नसीहत की बातें होती है, खैर ख्वाही की कलमात। ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहि सलाम के रोम या रैम के अंदर जो है वो किस किस्म के प्रोसेसर को फिट कर दिया था कि हर किस्म की मखलूक की बोली को समझ सके? हम तो दो जबानें सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, चले कुछ लोग जो है वो तीन चार जबानें सीख लेते हैं, उनको इंसानों की जबानें नहीं खाली, जिन्नों की जुबान और हवा की जुबान और चरंद परिंद की जुबान, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। ये सुलेमान अलैहि सलाम तो क्या मतलब अल्लाह ताला की असल चीज है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया तो अल्लाह ताला ये सारे काम कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, मकसद यहाँ पर ये नहीं कि वह सुलेमान अलैहि सलाम को बस कुछ और समझना शुरू हो जाना, बल्कि अल्लाह ताला की देन ऐसी होती है। वह ऊतीना मिन कुल शय, लफ्ज कुल असल लुगत के एतबार से तमाम अफराद जिन्स को आम होता है, मगर बसा औकात उमूम कुल्ली मुराद नहीं होता, बल्कि किसी खास मकसद की हद तक उमूम मुराद होता है। उमूम कुल्ली का मतलब हर चीज कुल, ठीक है, हर चीज के ऊपर कोई चीज अगर शामिल हो जाए ना, हर चीज को शामिल हो जाए तो उसको कहेंगे उमूम कुल्ली। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये जो कुल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये उमूम के मानी में नहीं है, जैसे कि यहाँ मुराद सिर्फ उन अशिया का उमूम है कि जिनकी सल्तनत व हुकूमत में जरूरत होती है, वरना जाहिर है कि हवाई जहाज, मोटर, रेल वगैरह उनके पास नहीं थे। ठीक है, अगर उमूम कुल्ली तो फिर तो माजी, हाल, मुस्तकबिल की तमाम चीजें जो है उनको अता हो गई, हालांकि उनको तो ना प्लेन ना ट्रेन ना गाड़ी, राइट, कुछ भी इनको आता नहीं हुआ इनमें से, तो उस वक्त की जो जरूरियात थी ना सल्तनत हुकूमत के लिए वो उनको आता हुआ। ठीक है, रब रब्बे औज़िअनी, ये वज़ा से मुश्तक है, यानी इसका जो रूट वर्ड है वो वज़ा है, जिसके लफ्ज़ी मानी रोकने के, वज़उन, वज़उन जो है वो नाउन होगा और वज़ा जो है वो वर्ब होगा। मतलब इस जगह ये है कि मुझे इसकी तौफीक दे दीजिए, रब्बे औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक, ठीक है, मुझे इसकी तौफीक दे दीजिए कि मैं शुक्र नियमत को हर वक्त साथ रखूं, उससे किसी वक्त जुदा ना हूं, जिसका हासिल मुदावमत और पाबंदी है। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी, मुदावमत, जैसे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतर अमाल कौन से होते हैं कि जो कि थोड़े हों लेकिन कंसिस्टेंटली किए जाए। ठीक है, तो सुलेमान अलैहि सलाम ने भी कंसिस्टेंसी की दुआ मांगी। इससे पहली आयत में फहुम यूज़ऊन इसी मानी में आया है कि लश्कर को कसरत की वजह से इंतशार से बचाने के लिए रोका जाता था, यानी इशू जो आया था ना कि वहुशरा लिसुलेमान जुनूदुहु मिन अलजिन्न वलइंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन। ठीक है, जब उनका लश्कर को जो जमा किया जाता था ना जिन और इंस और परिंदों का, तो उनको रोका जाता था, रोका जाता था मतलब उनको खड़ा किया जाता था, उनको जो है ना वो स्टैब्लिश किया जाता था। ठीक है, ताकि वो तितर बितर ना हो जाए, राइट, लश्कर जो है ना वो अफरा तफरी का शिकार ना हो जाए, इतना बड़ा लश्कर होता था। ठीक है, तो रोकने के मानी में, ठीक है, बाकायदा استقامت کے معنی میں, لشکر جو ہے نا وہ قائم رہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اسی لفظ وضع کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی دعا کے اندر بھی یہی لفظ استعمال کیا, رب اوزعنی ان اشکر, کہ مجھے اس شکر کے اوپر استقامت عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے, کوئی سوال آپ کو پوچھ رہے ہیں تو آگے چلتا رہے گا, اتنی سپیڈ سے ویسے عموماً ہم چلتے نہیں. چلیں آگے ہی پڑھ لیتا ہوں, دو منٹ اور ہیں. کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, یہاں رضا بمعنی قبول ہے. معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو. روح المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے, یعنی اس آیت سے ہی روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ عمل صالح کے لیے قبولیت لازم نہیں ہے, بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتی ہے کچھ شرائط کے اوپر. اگر وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تب جو ہے نا قبولیت ہوتی ہے, ورنہ قبولیت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ نیک عمل کر لیا. اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً, یعنی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر نیک عمل کر لیا اب تو اللہ کے اوپر گویا کہ بائنڈنگ ہو گیا کہ جس کو قبول بھی کرے. نہیں, کوئی لزوم نہیں ہے, نہ تو عقلاً کہ بھائی انسان اپنی عقل سے سوچے کہ جب نیک عمل کر لیا تو کیوں رد کیا جائے گا. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ ہمارے نیک اعمال جو کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہی استعمال کر کے وہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا تیر مار لیا ہے, ہم نے کیا تیر مار لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے کیا تیر مار لیا کہ ہم نے صدقہ خیرات کر دیا, کسی کی مدد کر دی. بھائی ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا نا, نہ تو مال اپنا, نہ تو اپنا جو ہے وہ ہاتھ پیر اپنے, بھائی نہ تو کوئی طاقت قوت اپنی, لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, تو عقلن یہ عقلی تھاٹ پروسیس رائٹ کہ کوئی عقلن لزوم نہیں ہے عمل اور قبولیت کے اندر, اور نہ شرعن. شرعن کا مطلب کیا کہ کوئی ایسا اللہ کا حکم نہیں آیا ہوا, کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جی بس کر لیا تو اب قبول ہونا لازم ہو گیا, تو یہ شرن. ٹھیک ہے, تو نہ کوئی عقلاً لزوم ہے اور نہ شرن لزوم ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی, ربنا تقبل منا. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اصل گھر بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, جو کہ یعنی عام مسجد بھی نہیں کہ بھی پتہ نہیں وہ مسجد جو ہے وہ کس علاقے میں کیسی بنی, اللہ کا اصل گھر اللہ کے حکم کے اوپر بنا رہے ہیں, رائٹ, وہی کے ذریعے سے بنا رہے ہیں. جنت سے پتھر آ رہا ہے حجر اسود, اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے بنا رہے ہیں, پھر بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں, اسمپشنز کی بنیاد پر بالکل بھی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرما دے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دعا ہے نا, دعا کا بھی ایک بڑا ایک 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 نقطے کی بات سنتے جائیں, اگرچہ کہ ٹائم جو ہے وہ ایک منٹ اوپر ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ دعا جو مانگتے ہیں نا ہم, اس دعا کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, قبولیت ایک دعا بھی قبول ہونا جو ہے نا یہ بھی شرطوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے, تو خیر بہت بڑا تفصیلی ٹاپک ہے یہ دعا کی قبولیت والا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو دل میں آئی ہوئی ہے بات نا, تو کم از کم وہ سمجھنے کی کوشش کریں, وہ یہ ہے کہ دعا اس چیز کے بارے میں انسان مانگتا ہے کہ جو کہ وہ اپنے پاس پہلے سے موجود نہیں سمجھتا, کہ میرے پاس یہ چیز پہلے سے موجود ہے, جس کو وہ نہیں سمجھتا نا, اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا, یا کم از کم اس کو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے, یا بلکہ ضروری ہے ایسی کیفیت کہ وہ واقعی اس بات کو اپنے پاس موجود نہ سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے عاری سمجھے, اپنے آپ کو اس سے محروم سمجھے, اور اس سمجھ کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ سے اس کو مانگے. ٹھیک ہے, क्या मतलब? मतलब ये कि कभी ऐसा होता है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा हो जाता है हम जैसों के साथ। हम तो बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे हमारे मामला आते हैं ना, हमारे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। हम दुआ तो मांग रहे होते हैं, लेकिन दिल के गोशों में ना हमारी ये कैफियत होती है कि हमारे पास पहले से है, हमारे पास ये चीज पहले से है। तो अब हम जो मांग रहे होते हैं ना, ये हम जो है ना वो, यानी जिसको कहते हैं ना खाना पूरी करना, है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना, या किसी ने कह दिया था तो बस उसके कहने के ऊपर हमने कर लिया। वरना दिल में है कि भाई ये तो मेरे पास पहले से है। अब ये चीज जो है ना, हम नौकरी के बारे में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी खत्म हो गई, अब उसके दिल में ये बात कोई थोड़ी होती है कि जी मेरे पास तो पहले से नौकरी है, तो मैं अल्लाह से क्या नौकरी मांगू, राइट? भाई नौकरी वाकई उसके पास नहीं है, तो वो अल्लाह ताला से जब नौकरी की दुआ कर रहा होता है ना, तो वाकई अपने आप को नौकरी से महरूम समझ के अल्लाह से दुआ कर रहा होता है ना, राइट? किसी के पास औलाद नहीं है, तो अब वो कोई दिल में ये कोई थोड़ी सोच रहा होता है कि मेरे पास तो पहले से औलाद है, तो मैं ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अल्लाह से औलाद की दुआ मांग लू, राइट? ऐसा तो नहीं करता ना भाई। नहीं है औलाद, जब भी तो अल्लाह से औलाद मांग रहा है। लेकिन कबूलियत और तौफीक, ये कुछ ऐसी इनटेंजिबल किस्म की बातें हैं कि जिनमें ये गड़बड़ हम कर जाते हैं, ठीक है, जिनमें हम ये गड़बड़ कर जाते हैं। अकल समझ, अकल समझ, तौफीक, राइट, कबूलियत, ये ऐसी चीजें हैं कि हम जो है ना वो दुआ जो मांग रहे होते हैं ना अल्लाह ताला से, तो दिल के अंदर एक होता है, मैं तो पहले से मकबूल हूं, मैं तो पहले से समझदार हूं, मैं तो पहले से मकबूल हूं, राइट, मैं तो पहले से नेक हूं। अब अल्लाह से नेकी की तौफीक मांग तो रहा है, लेकिन दिल के अंदर ये कैफियत है, मैं तो पहले से नेक हूं। अब क्यों मांग रहा है भाई? भाई वो शेख साहब ने कहा था कि अल्लाह से नेकी की दुआ मांगे, और उस वजह से मांग रहा हूं, या सभी मांग रहे थे तो इस वजह से मैंने भी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन हूं तो मैं अंदर से नेक। तो ये भी दुआ की मकबूलियत को जो है ना वो मशकूक बना देती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना जी, किसी ने हमें कोई नसीहत करी तो हम कहते हैं आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसमें जो है ना, ये खाली ये कह देने से काम नहीं बनता कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। भाई आपके अगर अंदर वो चीज नहीं है, और आप वाकई तस्लीम करते हैं इस बात को कि आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो आप खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगे, ठीक है, किसी को कह भी दें दुआ करने के लिए, लेकिन खुद मांगे, क्योंकि खुद मांगने के अंदर जो है ना ये लाजमी बात है कि आप अपने आप को उससे आरी समझ रहे हैं, तब अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। बात समझ आ रही? किसी को कोई इश्काल हो उसके ऊपर, ना समझ में आई हो तो क्लियर कर लें। तो कबूलियत ये उनमें से एक चीज है, ठीक है ना, यानी अपने आप को ऐसा दिल के अंदर ऐसी खशियत होनी कि वाकई मेरा अमल तो अल्लाह ताला के शान के काबिल हो ही नहीं सकता, राइट? मेरा अमल जो है ना ये तो रद्द कर दिए जाने के काबिल है, ये कबूल हो जाने के काबिल कोई थोड़ी है, ये अल्लाह की शान के पर्दों से तो बहुत नीचे रह जाता है, कोई इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। बस अल्लाह ताला के सामने आजजी के साथ सही मानों में बिल्कुल अपने आप को कबूलियत से महरूम समझ करके अल्लाह ताला से कबूलियत मांगो, राइट? ये जो कैफियत होती है ना, ये फिर दुआ की कबूलियत के सबब बन जाती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जब शायद कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? चले, उन्होंने कुछ लिखा है, समटाइम्स वी हैव अ रिक्वायरमेंट and we make dua with ajzi. When we get it, the kaifiyat in dua changes and is not the same as before. How to fix it? भाई जब आपने कोई चीज मांगी है और वो चीज आपको अगर मिल गई है, और मिल गई है का मतलब ये कि अब आप फील कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास आ गई है, जब आ गई है तो अब आप किस चीज के लिए उस कैफियत को मांग रहे हैं, वो तो आ गई आपके पास, यानी आप समझ गए, आपके जहन में ये अंडरस्टैंडिंग बन गई कि मेरे पास कबूलियत आ गई। जब आ चुकी, अब क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह ताला से, अब क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है ना? जब आ गई तब क्या मांग रहे हैं? मिसाल के तौर पर नौकरी और औलाद, जब औलाद आ गई अब तो वो वाली कैफियत नहीं रहेगी ना, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अब तो आ चुकी औलाद, नौकरी आ चुकी, ठीक है ना, लेकिन कबूलियत और तौफीक और समझ, अंडरस्टैंडिंग, शऊर, अकल, ये ऐसी चीजें नहीं है कि बस आ गई, नहीं, इसके लिए तो सारी जिंदगी यही समझना है, नहीं आई मेरे पास, अभी तक नहीं आई मेरे पास, मैंने तो मांग नहीं है और यही तसव्वुर करके और यही सोच के मांगना है, मेरे पास नहीं है, इसको खशियत कहते हैं, इसको आजिज कहते हैं। अल्लाह ताला से कम से कम हम ये दुआ मांगने, अल्लाह मुझे इसकी समझ अता फरमा दीजिए और मुझे सही मानों में ऐसा बना दीजिए जैसे कि आप चाहते हैं। ठीक है, चल बहुत देर हो गई, हुआ तो दावाना, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।